समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
बुजुर्ग कह रहे हैं कि पछतावा हमारा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं बदल सकती, तो बेहतर है कि पछतावा और चिंता छोड़कर हम अतीत और भविष्य से हटकर वर्तमान के बारे में सोचें और उसे ही बेहतर बनाने में अपने सारे प्रयास लगा दें। यकीन मानिए, अगर वर्तमान अच्छा हुआ तो भविष्य भी खुद ब खुद संवर ही जाएगा। लिहाजा जो गुजर गया उसे मुड़कर मत देखो और जो आने वाला है उसके लिए अभी सही दिशा में जी जान से पूरी कोशिश करो। जैसे अभी हमारी कोशिश रहेगी कि आकाशवाणी गोल्ड के कार्यक्रम आज सवेरे में आपके लिए देश दुनिया के समाचार, मनोरंजन, गीत संगीत सब आपके साथ साझा करें और इस वक्त को खूबसूरत बनाएं। इसी सोच के साथ स्वागत करती हूं आप सभी का और अपनी साथी सायरा मुज्तबा का कार्यक्रम आज सवेरे में। गुड मॉर्निंग सायरा।
गुड मॉर्निंग नई, नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड सम ऑफ यू वुड बी अफेक्टेड बाय मंडे ब्लूज व्हाइल अदर्स वुड बी पेप्ड अप लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीक, एंड दैट्स व्हाई हस्ब दस्तूर हम हाजिर हैं ताजा तरीन आज सवेरे के साथ, इज़न्ट इट?
बिल्कुल।
एंड वी ऑल नो दैट पॉलिटिकल फर्वर इज एट इट्स पीक विद कैंपेनिंग एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन। द फर्स्ट फेज हैज ऑलरेडी एंडेड, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। द सेकंड फेज इज ऑल सेट टू बिगिन।
और उसी से हम अपने समाचारों की भी शुरुआत करते हैं। लोकसभा के दूसरे चरण का प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। दूसरे चरण में केरल के 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट सहित 88 संसदीय सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।
Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi will address an election rally in Aligarh, Uttar Pradesh today. The Aligarh parliamentary constituency is gearing up for the polls in the second phase of Lok Sabha elections scheduled for the 26th of this month. The seat is poised for a triangular contest between incumbent MP and BJP candidate Satish Gautam, Samajwadi Party's Chaudhary Bijendra Singh and Bahujan Samaj Party's Hitendra Kumar.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉ पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान किए जाएंगे। डॉ बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा।
In Jammu and Kashmir, the district sweep Sel Rajouri orchestrated Natrang's travelling show series Lok Tantra Ka Asli Mantra at bus stand Sundarbani today. Akashvani Jammu correspondent reports that the Natrang travelling show, renowned for its impactful presentations, delivered a compelling performance aimed at enlightening the masses about the importance of voting. Penned by Padma Shri Balwant Thakur and skillfully directed by Neeraj Kant, the play captivated audiences with its poignant narrative, emphasizing pivotal role of every citizen in shaping the nation's destiny through active participation in the electoral process.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने घोषणा की है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अब सीधे नेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हैं। जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है वहां उम्मीदवारों के पास कुल मिलाकर न्यूनतम 75% अंक या प्वाइंट स्केल पर इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को उस विषय की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
In Maldives, ruling party PNC of President Mohamed Moizu is set to win with a thumping majority in Sunday's parliamentary elections, results showed. Moizu's People's National Congress won 66 of the first 86 seats declared in the 93-member Majlis or Parliament, according to the Elections Commission of Maldives results. However, the main opposition Maldivian Democratic Party, which previously had a supermajority, was headed for a defeat with just a dozen seats. Parliamentary elections have been crucial in Maldives as elected governments have been keen to secure a majority in parliament to ensure smooth administration, secure presidential tenure by avoiding parliamentary impeachment and minimize politicization of policies during the presidential tenure.
देश के पूर्वी भागों में अगले चार दिन लू का तेज प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले चार दिन गर्मी की स्थिति सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और केरल में इस महीने की 25 तारीख तक मौसम गर्म और नमी वाला रहेगा। इस बीच पूर्वोत्तर और उससे लगते अन्य हिस्सों में अगले तीन दिन में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलेंगी। ये स्थिति अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बुधवार तक बनी रह सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आगामी दो दिन में भी धूल भरी हवाएं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बुधवार तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी लगभग ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना व्यक्त की गई है।
In some international news, Israeli strikes on the southern Gaza city of Rafah overnight killed 22 people, including 18 children. The Palestinian health officials said on Sunday that the first Israeli strike in Rafah killed a man, his wife and a young child. The second strike killed 17 children and two women from an extended family. The attacks come hours after the U.S. House of Representatives passed $26.3 billion in aid to Israel on Saturday, which includes $9 billion in humanitarian assistance for the Gaza Strip. Israel has been conducting airstrikes almost every day on Rafah, where more than half of Gaza's 2.3 million residents sought refuge. It has also vowed to expand its ground offensive to the city on the border with Egypt, despite international calls for restraint. The latest attacks in southern Gaza come as the death toll in the conflict has risen to more than 34,000 Palestinians.
IPL क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स की पूरी टीम 142 रन ही बना सकी। जवाब में गुजरात ने अंतिम ओवर में 143 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले हुए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 रन से हरा दिया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
And Priyanka Goswami and Akshadeep Singh have secured a Paris 2024 Olympic quota for India in the marathon race walk mixed relay event. The Indian duo got the berth after finishing 18th at the World Athletics Race Walking Team Championships 2024 in Antalya, Turkey on Sunday. Akshadeep Singh and Priyanka Goswami clocked 3 hours 5 minutes 3 seconds to make the cut. A new addition to race walk categories, the marathon mixed relay event will be making its Olympic debut at Paris 2024. The World Athletics Race Walking Team Championships 2024 saw the marathon mixed relay feature at a major championship.
और अब आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई कुछ मुख्य खबरें। सायरा,
Well, let's start with Chennai. The air traffic to UAE, which was severely affected due to the rains, is being restored since Saturday. The transit passengers from Chennai flying via Dubai to the UK, Europe, the US and other destinations for leisure and family visits are the most affected, though flights on the Chennai to Dubai route have returned to normal schedule after disruptions due to heavy rain and flooding in the UAE. Emirates Airlines has said that regular flight schedules have been restored since Saturday. Another news coming in from Chennai, according to Infosys, Senapati's co-founder, Chris Gopalakrishnan, investing in brain health in particular will enable scientists to advance computing. He added during a speech in Chennai that in order for computers to be able to accept, store, process, analyze and retrieve data, they were first designed to resemble human brains. In appreciation of his contributions to the advancement of medical science in general and brain research in particular, he was given the Lifetime Achievement Award 2024. Moving on to Bengaluru, Karnataka Governor Thavarchand Gehlot inaugurated a vintage car and bike rally in Bengaluru yesterday with an objective to create voters' awareness. Speaking on the occasion, the governor highlighted the importance of India being world's largest democracy and the crucial role of voters in fortifying the democratic framework. He also underscored the pivotal role that election plays in defining the future of our country and its democratic principles. He called upon every voter to cast his or her vote to strengthen our republic country and uphold the democratic ideals. Also in Karnataka, the Chief Electoral Officer Manoj Kumar Meena has said that model polling booths are created to encourage women, youth, PWD voters and tribals to vote. Manoj Kumar Meena hoped that the voters' turnout would improve in this election. He informed that every assembly constituency has a minimum of 5 Sakhi or pink booths managed by women and exclusively for women voters. Near the tribal habitations, 40 polling booths, especially designed to suit tribal settlements and traditions, are opened in the state. Moving on to Hyderabad, in Telangana, women's self-help groups are a vital component of campaigns to raise voter turnout and voter awareness. Approximately 40% of the state's female voters, or roughly 65 lakh women, are involved in women's self-help groups and have the potential to significantly influence election outcomes. Along with the SHG members, Hyderabad's election authorities are showcasing voter education initiatives as well. So, Naeem, this was the buzz that I had from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What do you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली के यातायात विभाग ने आज कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ओवर स्पीडिंग की घटनाओं में 15% की कमी आई है। एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से यातायात विभाग ने बताया कि इस महीने की 15 तारीख तक इस साल ओवर स्पीडिंग के 8,16,000 के करीब मामले दर्ज हुए हैं। वहीं पिछले साल इसी अवधि में ये मामले 9,52,000 से ज्यादा थे। यातायात विभाग ने बताया कि इस उपलब्धि को सटीक परिवर्तन सुनिश्चित करने और प्रभावी जन जागरूकता अभियान चलाने से पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि ओएसवीडी कैमरों की तैनाती ने इन घटनाओं की कमी में अहम भूमिका निभाई है। यातायात विभाग ने राजधानी के सभी मोटर चालकों से सुरक्षा को प्राथमिकता देने और गति सीमा का अनुपालन करने की अपील की है। दिल्ली चुनाव आयोग ने अपनी स्वीप पहल के तहत आगामी लोकसभा चुनावों के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए कल लाडपुर गांव के जय दादा पाववारा मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की। इसके अलावा चुनाव के महत्व पर प्रकाश डालने और भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। आयोग ने मतदाता सूची में जनता द्वारा अपना नाम जांचने के लिए न्यू मोतीबाग और ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। राजधानी दिल्ली में अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली में छठे चरण के तहत मतदान के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और मतदान 25 मई को होगा। मतगणना 4 जून को सम्पन्न होगी। और मुंबई की तरफ अगर रुख करें तो यात्रियों की सुविधा के लिए और मौजूदा अवकाश अवधि के दौरान यात्रा की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे ने विशेष किराए पर अधिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें ट्रेन नंबर 09075, 09076 मुंबई सेंट्रल काठगोदाम साप्ताहिक, सुपरफास्ट स्पेशल 20 ट्रिप, ट्रेन नंबर 09185, 09186 मुंबई सेंट्रल कानपुर अनवरगंज साप्ताहिक, सुपरफास्ट स्पेशल 22 ट्रिप और ट्रेन नंबर 09189, 09190 मुंबई सेंट्रल कटिहार साप्ताहिक स्पेशल 22 फेरे वाली ट्रेनें शामिल हैं। मध्य रेलवे यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए पुणे और दानापुर बिहार के बीच भी एक तरफा ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। 01499 समर स्पेशल पुणे से दानापुर तक चलेगी और दौंड कॉर्ड लाइन अहमदनगर, कोपरगांव, मनमाड़, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा पर ये ट्रेन रुकेगी। और एक खबर है हमारे पास कोलकाता से भी। कोलकाता में पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं का दिल जीतने में लगे हुए हैं। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभी पार्टियों के नेता कोलकाता सहित पूरे पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को लुभा रहे हैं। गर्मी के कारण नेता दोपहर में प्रचार प्रसार से बच रहे हैं। वो सुबह और शाम के समय का उपयोग सार्वजनिक बैठकों और आउटरीच गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। और अब सायरा बात कर लेते हैं महानगरों की खबरों के बाद महानगरों के मौसम के बारे में।
यस एब्सोल्युटली। तो दिल्ली से शुरुआत कीजिए।
जी बिल्कुल, दिल्ली की अगर हम बात करें तो आमतौर पर दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, हालांकि हमारे दिल्ली वालों ने आज सुबह सुबह भी हल्की बौछार का और बादलों का एक्सपीरियंस कर लिया है, लेकिन आगे भी आज दिन में यही कुछ होने वाला है कि आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान की जहां तक बात है तो 24 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है दिल्ली में। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, और कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
इफ यू टॉक अबाउट चेन्नई, देयर वुड बी अ पार्टी क्लाउडी स्काई टुडे एज वेल, मिनिमम टेम्परेचर वाज 29, मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस, व्हाइल इन बेंगलुरु द स्काई वुड बी पार्टी क्लाउडी and temperature would hover between 24 and 37 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm, and temperatures in Hyderabad will hover between 24 and 37 degrees Celsius.
वैसे तो हमारे श्रोताओं को पता ही है कि आज 22 अप्रैल है, लेकिन अगर हमने अपनी जबान से 22 अप्रैल कहा है तो लोग समझ गए होंगे कि हम यकीन 22 अप्रैल में इतिहास में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिक्र करने वाले हैं।
जी, तो आप कौन से सन से शुरू कर रही हैं?
मैं सोच रही हूँ 1792 से शुरू करा जाए, अगर आपके पास इससे पहले की कोई घटना है तो आपसे शुरू।
नहीं नहीं, आप शुरू करें।
चलिए, 1792 में 22 अप्रैल के दिन ही अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने यूरोप के युद्ध में अमरीकी तटस्थता की घोषणा की थी। 1906 में आज ही के दिन यूनान के एथेंस में 10वीं लोक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी।
ऑन दिस डे इन 1921 सुभाष चंद्र बोस रिजाइन्ड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस एंड फॉर्म द साउथ कलकत्ता सेवक समिति आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। ऑल्सो ऑन दिस डे इन 1942 द टेली कम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट जबलपुर।
1926 में 22 अप्रैल के दिन ही पर्शिया, तुर्की और अफगानिस्तान के बीच सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1931 में 22 अक्टूबर को ही मिस्र और इराक ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1944 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने न्यू गिनी में जापान के खिलाफ एक बड़े हमले की शुरुआत की थी।
And on this day, 1958, Admiral R.T. Kattari was appointed as the first Indian chief of the naval staff.
1954 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत रूस यूनेस्को में शामिल हुआ था। 1966 में 22 अप्रैल के दिन तत्कालीन सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 1970 में 22 अप्रैल के दिन ही दुनिया में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। तो अपने सभी श्रोताओं को याद दिलाते हैं कि आज पृथ्वी दिवस है, और पृथ्वी का हम जितना ख्याल रखते हैं उससे ज्यादा ख्याल रखना हमारी जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी भी, क्योंकि पृथ्वी का हम ख्याल रखेंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे।
एंड इनफैक्ट अब कोई चारा भी नहीं है बिना ख्याल रखे, खेल सकते हैं। वी बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, आई वुड से। एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंटरव्यू दैट आई हर्ड इन विच द पर्सन सेड दैट अर्थ इज सो पावरफुल नहीं कि आप जितना नुकसान करें ना, एक दिन वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेगी, चाहे प्रलय आ जाए चाहे कुछ आए, बट यू हैव टू फर्स्ट प्रिजर्व मैनकाइंड।
एक्चुअली
जो सबसे ज्यादा खतरा है वो मैनकाइंड को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही है, बिकॉज ऑब्वियसली वंस द अर्थ विल, यू नो, नेचर हैज इट्स ओन फ्यूरी, इट विल टेक इट्स रिवेंज।
बिल्कुल,
ऑल ऑफ अ सडन।
हाँ, और हम ये हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में कई बार इन चीजों को भुगत भी चुके हैं। बहुत दूर ना जाके अगर हम अपने दौर में भी देखें तो इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमको चाहिए कि हम खुद को भी बचाएं और आने वाली नस्लों के लिए भी एक अच्छी जमीन को तैयार कर सकें।
यस, बट इंसान ऐसी चीज है ना, नहीं कि हिस्ट्री हैज ऑलवेज रिपीटेड इटसेल्फ और इंसान हमेशा
भूल जाता है। बिल्कुल। चलिए, 22 अप्रैल को ही 1977 में आज ही के दिन ऑप्टिकल फाइबर को पहली बार टेलीफोन ट्रैफिक में यूज किया गया था। 1983 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यान सोयूज T8 पृथ्वी पर लौटा था, और 2008 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लुडविक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये तो बात हुई 22 अप्रैल की, इतिहास की घटनाओं की, लेकिन 22 अप्रैल के बारे में हमारे पास अभी और बहुत सारी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जिनमें कुछ उन शख्सियतों की हम बात कर सकते हैं जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। तो आगाज करते हैं जोगेश चंद्र चैटर्जी के जिक्र के साथ, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 22 अप्रैल 1969 में उनका निधन हुआ था। काकोरी कांड के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जोगेश चंद्र चटर्जी। ये एक अनुशीलन समिति की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। काकोरी कांड में गिरफ्तार करके इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। रिहा होने के बाद इन्होंने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी नामक संगठन की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने अपने 24 साल के कारावास में 2.5 साल भूख हड़ताल में गुजारे, जिसमें सबसे लंबी भूख हड़ताल 142 दिन की थी। और सायरा, मैं हैरान होती हूं कि किस तरह से इन्होंने मैनेज किया होगा 142 दिन मायने रखने अपने आप में।
एब्सोल्युटली, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग टू क्लासिकल सिंगर्स ऑफ यस्टरडेज, अंजनी बाई मालपेकर एंड कानन देवी। बात करते हैं पहले अंजनी बाई मालपेकर की। इट्स हर बर्थ एनिवर्सरी टुडे। अ नोटेड क्लासिकल सिंगर बिलोंगिंग टू द भिंडी बाजार घरान ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। इन 1958 अंजनी बाई बिकेम द फर्स्ट वुमन टू बी अवार्डेड द संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, विच इज द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय द संगीत नाटक अकादमी, इंडियाज नेशनल अकादमी फॉर म्यूजिक, ड्रामा एंड ड्रामा। Acclaimed for her beauty in her youth, Malpikar was the muse of painters like Raja Ravi Verma and M.V. Dhurandhar. Malpikar gave her debut performance at a concert in Mumbai in 1899 at the age of 16. In those days, women of so-called respectable families never sang in public, while Malpikar went on to have a flourishing singing career with both public and royal patronage. In time, she became the doyen of the gharana, and besides her singing, she also got acclaim for her beauty. When painter M.V. Dhurandhar did an oil painting of her, another painter, Raja Ravi Verma, was inspired and went on to do a series of paintings with her as muse, including Lady in the Moonlight, Lady Playing Swarbar, Mohini and The Heartbroken. She modeled for him during his stay in Mumbai in 1901 and 1903. एंड दूसरी सिंगर जिनका जिक्र किया, कानन देवी का, उनके बारे में भी बात कर ली जाए।
जी बिल्कुल, कानन देवी का नाम बहुत मशहूर नाम है, न सिर्फ हिंदी फिल्मों के जरिए से अगर हम कहें, बल्कि बांग्ला भाषा भी की जो फिल्में हैं वो भी जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो इनको अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता रही कानन देवी, जिनका असली नाम कानन बाला था। और कानन बाला के नाम से भी हमें इनके गाये हुए गीत, जैसे गीता दत्त के गाये हुए गीत गीता रॉय के नाम से भी हमें मिलते हैं, ऐसे ही कानन देवी के गाए हुए गाने कानन बाला के नाम से भी पाए जाते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने न सिर्फ फिल्म निर्माण की विधा बल्कि अभिनय और पार्श्व गायन से भी दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई थी। और बहुत ही हैरानी की बात इनकी भी केस में यह है सायरा, कि इन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग, कोई प्रशिक्षण हासिल नहीं किया, उसके बावजूद गायन की दुनिया में इन्होंने प्रवेश भी किया, अभिनय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, और उनके गाए हुए गीत आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और जहां तक बात है इनके पुरस्कार की, तो मेरे ख्याल से कहने की जरूरत है नहीं, हमारे श्रोताओं को यकीनन पता होगा, लेकिन हम बताएंगे जरूर कि 1976 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें वो वाला दिया गया था जो बांग्ला कलाकार के रूप में इनकी ये पहली शख्सियत थी जिन्हें इस क्षेत्र में एक ये पुरस्कार दिया गया था।
यस, इन फैक्ट वन ऑफ द अर्ली सिंगिंग स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा, शी इज क्रेडिटेड पॉपुलरली एज द फर्स्ट स्टार ऑफ बंगाली सिनेमा, एंड हर सिंगिंग स्टाइल यूजुअली इन रैपिड टेम्पो वॉज यूज इंस्ट्रूमेंटली इन सम ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ न्यू थिएटर्स कोलकाता।
और क्योंकि हमने बात करी है कि हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में इनकी समान पकड़ थी और समान रूप से ये लोकप्रिय थी, तो हिंदी गीत तो हम अक्सर ही सुनते हैं। आज इनका एक बांग्ला गीत सुना जाए क्या?
बिल्कुल।
आज पुण्यतिथि है श्रवण कुमार चतुर्भुज राठौर की, जिन्हें आम तौर पर हिंदी फिल्मों के चाहने वाले नदीम श्रवण की जोड़ी के रूप में जानते हैं। भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण में से ये एक थे और इनका निधन 22 अप्रैल 2021 को हुआ। 150 पुरस्कार जीत चुके संगीतकार श्रवण कुमार राठौर ने 160 फिल्मों में संगीत की सुरलहरी बिखेरी। संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी को पूरी रूप से जो पहचान मिली थी वो थी फिल्म आशिकी के गीतों से। संगीतकार के रूप में 1975 में रिलीज पहली फिल्म इनकी दंगल थी, जो भोजपुरी भाषा की रंगीन फिल्म थी और इसने गोल्डन जुबली मनाई थी। नदीम श्रम के जोड़ी ने साजन, दिल है के मानता नहीं, सड़क, सैनिक, दिलवाले, राजा हिंदुस्तानी, फूल और कांटे और परदेश जैसी अनेक फिल्मों का संगीत दिया और संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई।
मैं तेरी शायरी
आज ही भारत के जाने माने वायलन वादक लालगुड़ी जयरमन की भी पुण्यतिथि है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और संस्कृत के संगीतकार के रूप में भी उनकी विशेष पहचान थी। थिलानस और वर्णम के लिए सबसे प्रसिद्ध श्री लालगुड़ी जयरमन को आधुनिक समय में सबसे सफल शास्त्रीय संगीतकारों में से एक माना जाता है। इनकी रचनाएं 4 भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत में है। वो राग के सभी क्षेत्रों में संगीत रचना करते थे और इनकी रचनाएं भरतनाट्यम नृत्यांगनाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया, जिनमें खासतौर पर संगीत चूड़ामणि, पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शामिल है।
We are also remembering Usha Kiran on her birth anniversary, an actress of yesteryears, and she had a career that spanned over 4 decades. And she acted in over 50 Hindi and Marathi films, notably Daag, Patita, Baad Baan, Chupke Chupke, Milib and Bavarchi. She was also the sheriff of Mumbai during 1996 and 1997. And she began a career on stage with M.G. Rangnekar's Marathi play Ashirvad and entered the Hindi film industry with a small role in Uday Shankar's dance drama film Kalpana. And then later on, she went on to act in numerous popular Hindi films such as Nazrana, Daag, Baad Baan, for which she won the very first Filmfare Award as well, and Kabuliwala, Patita, Mili Bavarchi and Chupke Chupke. Her famous Marathi films include Shikleli Baiko, Jas Aaj Taase, Postatli Mulgi, Dudh Bhakar, Stri Janmahi, Tuzi Kaani and Kanyadaan. So let's listen to a beautiful song from one of her films.
Ji.
याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम,
हर से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम।
याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम,
प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम।
आज जयंती है सर गंगाराम की, जो एक प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजसेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक थे। उन्होंने सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी बनाई, जिसके अंतर्गत विधवा आश्रम, अपाहिज आश्रम, चिकित्सालय आदि संस्थाओं की स्थापना की गई। उनका जन्म 22 अप्रैल 1851 को शेखपुरा जिले के एक गांव में हुआ था। आधुनिक प्रारंभिक शिक्षा इनकी अमृतसर और लाहौर में हुई और इंजीनियरिंग की शिक्षा उन्होंने रुड़की कॉलेज से प्राप्त की। कुछ समय तक लाहौर, दिल्ली और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में नौकरी करने के बाद गंगाराम वाटर वर्क्स निर्माण का शिक्षण लेने के लिए इंग्लैंड गए और भारत लौटने पर 12 साल तक लाहौर में काम किया। सर गंगाराम ने प्रसिद्ध भवन, जलाशय, इंजीनियरिंग के अनेक उपकरणों के निर्माण आदि में बहुत योगदान दिया। उनकी सेवाओं के उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया था। और एक और बड़ी, बहुत बड़ी हस्ती की आज जयंती है, जिनका नाम है बलदेव राज चोपड़ा, जिन्हें आप और हम सब बी आर चोपड़ा के नाम से जानते हैं। भारतीय सिनेमा जगत में बी आर चोपड़ा के नाम से वो मशहूर भी हैं और ऐसे फिल्मकार के रूप में उन्हें याद किया जाता रहता है, जिन्होंने पारिवारिक, सामाजिक और साफ सुथरी फिल्में बनाकर लगभग 5 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। नया दौर, वक्त, हमराज, बाबुल और बागवान जैसी जिंदगी में रची बसी कहानियों को दर्शाती बी आर चोपड़ा की फिल्में आज भी सिने प्रेमियों के दिल और दिमाग पर अमिट छाप छोड़ती हैं। उन्होंने विधवा, पुनर्विवाह और वैश्यवृत्ति जैसी सामाजिक समस्याओं को अपनी फिल्मों का विषय बनाया। उनकी ज्यादातर फिल्में किसी न किसी सामाजिक मुद्दे पर आधारित रहती थी। फिल्म जगत में दिए गए उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बहुत सारी फिल्मों के बहुत से गीत के हैं, लेकिन अभी हम एक ऐसी फिल्म का ऐसा गीत सुनवा रहे हैं जिसने अपने आप में एक नई लीग की स्थापना की थी हिंदी फिल्मों में। धूल का फूल की हम बात कर रहे हैं।
तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ,
हसीनों से अहद वफा चाहते हो,
ये वो फिल्म थी जिस फिल्म ने वक्त की एक रफ्तार को बदल दिया, और ये वो वक्त है जो वक्त कह रहा है कि इजाजत ले लीजिए अपने श्रोताओं से। अनुमति दीजिए नईम अख्तर और सायरा मुज्तबा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं खत्म करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल FM 100.1 MHz पर।
नमस्कार।